मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 22 दिसंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी संदीप शर्मा का जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं जो कल आलोचनात्मक समीक्षा की बात कर रहा था उसी संदर्भ में कुछ और बातें करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले आइए कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और दूसरी, चूंकि मेरे पास कई महत्वपूर्ण घटनाएं आज हैं इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि उसके लिए कितना वक्त मिल पाएगा, लेकिन चलिए उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आइए पहले घटनाओं को देख लेते हैं। एक अखबारों में जो घटना है और ये रेडियो न्यूज पर भी था कि भारत वियतनाम समझौता। देखिए, होता क्या है कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनकी पकड़ में नहीं आता कि ये भारत वियतनाम समझौता क्या वाकई में महत्वपूर्ण हो सकता है या ये कि एक सामान्य सा समझौता है। क्योंकि देखिए, भारत के तो लगातार बहुत सारे देशों के साथ समझौते होते रहते हैं, तो या तो आप ये समझें कि जितने भी समझौते भारत दूसरे देशों के साथ कर रहा है वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, या फिर आपके अंदर ये समझ होनी चाहिए कि नहीं, इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। सिविल सर्विस की तैयारी की दृष्टि से ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फ्रेंड्स, ये जो भारत वियतनाम समझौता है डेफिनेटली बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है। अब आप कैसे समझेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है? देखिए, जब आप अपने सिलेबस में जाते हैं सिविल सर्विस के, तो वहां पड़ोसी देशों के बारे में बात होती है। ठीक है, वियतनाम हमारा उतना पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, पूर्व की तरफ देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो वियतनाम ईस्ट में आता है, तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं तो वियतनाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। एक ये पॉइंट हुआ। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे बकायदे न्यूज में भी आपने सुना होगा और अखबारों में भी दिया हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर कहा कि जो भारत का जो हिंद प्रशांत दृष्टिकोण है उस दृष्टि से भी जो वियतनाम है वो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया हिंद प्रशांत दृष्टिकोण। ये हिंद प्रशांत दृष्टिकोण क्या है आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सिविल सर्विस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके सही सही उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो देखिए, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हम लोग इस पर कई बार बातें कर चुके हैं। क्वाड की जब हम चर्चा करते थे तो हमेशा हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात होती थी, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन है वो लगातार अपना दबदबा बढ़ाता चला जा रहा है, या दबदबा इस रूप में नहीं कि वो सहायता दे करके, बल्कि सच पूछे तो वो सैन्य शक्ति विस्तृत करता चला जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, भारत का के लिए चिंता का विषय नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, देखिए सब, इसीलिए इन्होंने क्वाड 4 देशों का अपना एक संगठन भी तैयार किया है ताकि वो चीन के इस विस्तारवादी नीति को रोक सके। तो ऐसी स्थिति में फिर से लगता है कि नहीं, वियतनाम बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र हो सकता है, क्योंकि आप देखिए जाकर एटलस पर कि जो वियतनाम की लोकेशन है वो है कहां। आपको इतनी मेहनत करनी ही चाहिए, और देखिए अगर आप इस मेहनत से बचना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई सही काम कर रहे हैं। आपको मेहनत से दोस्तों नहीं बचना है। फिर भारत और वियतनाम के जो संबंध हैं, अब आप देखिए कि अगर आपको लगता है कि नहीं वियतनाम एक इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए, तो फिर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा वियतनाम के बारे में पढ़ लें और भारत और वियतनाम के संबंध कैसे रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। मुझे लगता है कि भारत और वियतनाम के बीच में अभी जो समझौते अभी हुए हैं, साइन हुए हैं, डेफिनेटली इन पर कुछ आर्टिकल्स या एडिटोरियल कमेंट्स आने चाहिए। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा जो पेड स्टूडेंट हैं कि बकायदे जो अमेरिका और वियतनाम के बीच में जो युद्ध हुआ था, कैसे वियतनाम ने उसका सामना करके पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया था, इस पर मेरा एक स्पेशल लेक्चर है। अब आप देखिए कि वियतनाम के और इस युद्ध की चर्चा करना मेरे लिए जरूरी नहीं था, लेकिन अगर आप वियतनाम को समझना चाहते हैं और भारत के साथ उसके संबंधों की गहराई को परखना चाहते हैं तो उस युद्ध की चर्चा के बारे में जानना आपको जरूरी है। क्यों इसलिए भी जरूरी है कि अक्सर आप इस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत पता लगा कि वियतनाम युद्ध का रेफरेंस पढ़ रहे हैं, तो वियतनाम युद्ध का रेफरेंस पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर अभी मैं भारत और वियतनाम के संबंधों के बारे में बात करूं तो जब अमेरिका और वियतनाम के बीच संघर्ष जारी था, युद्ध जारी था, बहुत भयानक युद्ध हुआ है, सामान्य युद्ध नहीं था, तब भारत ने बकायदे वियतनाम का समर्थन किया। अब आप देखिए, भारत वियतनाम का समर्थन कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। और इसके बाद जब कंबोडिया के साथ युद्ध हुआ तो बकायदे भारत ने सहायता दी है, तो स्वाभाविक है कि वियतनाम अब भारत के इस मदद और इस समर्थन को कहीं ना कहीं तो याद रखेगा ही। और फिर बाद में 1992 में जाकर के दोनों देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसमें भारत ने वियतनाम में तेल की खोज करने की बात कही, कृषि विकास के बारे में, विनिर्माण के बारे में, तीन क्षेत्रों में समझौते हुए। और खासकर तेल की खोज में तो भारत बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है वियतनाम के साथ। और इसको लेकर के चीन बीच बीच में आवाज़ भी उठा देता है कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, फलाना फलाना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। मुझे याद है कि 4-5 साल पहले जब हमारे राष्ट्रपति उस समय प्रणब मुखर्जी साहब थे, वो जब वियतनाम गए थे तो इस तरह की आपत्ति चीन ने उठाई थी। खैर मित्रों, तो यह है भारत वियतनाम समझौता और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है 2021 में जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो दो सदस्य अस्थायी सदस्य हैं जो बनाए चुने गए हैं, उनमें एक भारत भी है और एक वियतनाम भी, केवल दो ही नहीं चुने गए, मतलब अभी जो दो उसमें भारत और वियतनाम शामिल हैं। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है और वो ये है कि भारत में जो तेंदुओं की संख्या है उसमें 60% की वृद्धि हुई है, लेपर्ड 60% की वृद्धि। ये 2018 की रिपोर्ट है, अब तो हम 2020 के अंत में हैं। अब हमारे पास लगभग 12,850 तेंदुए हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, 13,000 भी आप कह सकते हैं लेपर्ड हैं, जो 2014 से 60% अधिक हैं। और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को ये विशेष रूप से याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो तेंदुए हैं वो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को एक प्रकार से आप लेपर्ड स्टेट कह सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि टाइगर स्टेट भी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है तो वह भी मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी हो गया है और लेपर्ड स्टेट भी हो गया है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इससे भी आगे जाकर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में, तो यहां मैं आपको एक दो तथ्य और बताना चाहूंगा कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, जब आप भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें आप वेस्टर्न घाट और पश्चिम पूर्वी घाट के बारे में पढ़ते हैं, तो पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा लेपर्ड है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा लेपर्ड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये रिपीट क्यों कर रहा हूं, ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि जब आप पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के बारे में पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट इकोलॉजी की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण घाट है, ठीक है, सबसे रिच आप कह समृद्ध घाट है वेस्टर्न घाट। तो अगर आपने पूर्वी घाट के बारे में नहीं पढ़ा है और सामान्य तरीके से आप अनुमान लगाएंगे तो आप यही कहेंगे कि नहीं नहीं, चूंकि पश्चिमी घाट तो बहुत महत्वपूर्ण घाट है और वो बहुत ही रिच है और वहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि लेपर्ड भी सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट में ही होंगे। तो उस आधार पर तो आप अनुमान ठीक लगा रहे हैं लेकिन आपका अनुमान गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो लेपर्ड हैं वो पूर्वी घाट में हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आप अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत कर लीजिए कि पूर्वी घाट में कौन कौन से स्टेट आएंगे और पश्चिमी घाट में कौन कौन से स्टेट आएंगे। पश्चिमी घाट में भी ठीक ठाक है, मतलब लगभग 3400 जो तेंदुए हैं वो पश्चिमी घाट में हैं और इसके डबल से भी अधिक जो है ना, लगभग 8000 जो तेंदुए हैं वो पूर्वी घाट में हैं, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। दोस्तों रेडियो न्यूज में दो बहुत महत्वपूर्ण डेटा आए थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको मालूम है कि स्वच्छता भारत अभियान मिशन की जो शुरुआत थी वो 2014 में की गई थी और लगभग अब 100% क्षेत्रों में स्वच्छता आ चुकी है। जब इसकी शुरुआत की गई थी उस समय केवल 38% में स्वच्छता थी, अब हम 100% तक पहुंच गए हैं। कभी अगर कोई इस पर प्रश्न पूछा जाता है तो आप एक डेटा दे सकते हैं कि इस बीच में लगभग 10,73,00,000 टॉयलेट बनाए गए हैं, एक डेटा है, तो 11.25 करोड़ आप याद रख सकते हैं या 10 करोड़ से भी ज्यादा ये बनाए गए हैं, तो इस तरह से आप डेटा को अपने दिमाग में रख सकते हैं। दोस्तों एक खबर आपने और भी पढ़ी है, नेपाल की संसद भंग कर दी गई है। इस पर मैंने अभी ज्यादा चर्चा नहीं की है, इस पर एक आज काफी कुछ एडिटोरियल कमेंट्स भी लिखे गए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। भारत के लिए ये थोड़ा सा इसलिए ज्यादा मायने रखता है कि वहां जो अभी सत्ता में थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक कलह के कारण ये संसद भंग हुई है। और देखिए, जब कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में होगी तो सीधी सी बात है कि वो चीन के साथ ज्यादा संबंध रखेगी, क्योंकि चीन में भी साम्यवादी सरकार है। तो इस लिहाज से ये कह लीजिए कि ये जो घटना है, अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं कि भारत की निगाह है ही। अब देखते हैं कि वहां चुनाव होंगे और फिर कौन सी पार्टी सत्ता में आती है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक तरीके से कह लीजिए कि कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी फेवरेबल आप इसे मान सकते हैं, हालांकि सीधे सीधे हम ये भी बात नहीं कह सकते। दोस्तों अब मैं मुख्य विषय के बाद पर आता हूं, और मुख्य विषय के लिए बिल्कुल समय अधिक बचा नहीं है, इसलिए मैं हो सकता है कि इसे कल आगे बढ़ाऊं। दरअसल कल जो मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल दिया था शेखर गुप्ता का, और मैंने आप सबसे अनुरोध किया था कि आप इस आर्टिकल को पढ़कर ये समझने की कोशिश करें कि जो आलोचनात्मक समीक्षा है या मूल्यांकन है, जहां दो शब्दों का इस्तेमाल एक साथ कर दिया जाता है, वो क्या होता है, उसके उत्तर कैसे लिखे जाने चाहिए। वह आर्टिकल इसी पैटर्न पर शेखर गुप्ता जी ने लिखा था। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने ने मेरी इस बात को स्वीकार करते हुए या इस बात पर विश्वास करते हुए सही में ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन कुछ मेल मुझे मिले हैं और मैं उम्मीद भी कर रहा था कि मुझे ऐसे मेल मिलेंगे। उस मेल में उन्होंने कहा कि सर ठीक है, उस आर्टिकल को तो हमने पढ़ा और हमें थोड़ी सी बातें समझ में भी आ गई हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि हम इस तरीके की क्षमता अपने अंदर विकसित कैसे करें, और वो आसान काम नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की क्षमता वो अपने अंदर लाएं कैसे, इस पर तो बात की ही जानी चाहिए। तो दोस्तों अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो पेड स्टूडेंट हैं उनके तहत, तो उनके लिए तो मैंने इस तरह के लेक्चर्स बहुत विस्तार के साथ उसमें डाले हुए हैं, लेकिन यहां भी मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी तो जरूर डालना चाहूंगा कि इस तरह की जो कैपेसिटी है कैसे विकसित की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे आज अपनी बात समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़े से लंबे समय की मांग करता है, लेकिन ये मैं आप सबसे वायदा करता हूं कि जल्दी ही मैं इस विषय पर आप सबसे बात करूंगा। और जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती, एक अनुरोध है कि इस लेक्चर को आप अपने दिमाग में रखें, और यदि संभव हो सके तो आप इसका प्रिंट भी ले लें, ताकि जब मैं बात करूं तो मेरी बात सुनने के बाद फिर से आप उस आर्टिकल को पढ़ करके जब देखेंगे तो मेरी बात आप ज्यादा अच्छे तरीके से आत्मसात कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अमोल साहनी, जालम गायकवाड़ खरगोन मध्य प्रदेश से, शशांक वाजपेयी और डोना सामंत कोलकाता से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।